ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् एषु पञ्च नमो यारो सौपावपणासन मङ्गलाणं च सर्वेषं परमं चत्तारि मङ्गलं हरिहन्त मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहु मङ्गलं केवलपण्डस्तु धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमं हरिहन्त लोकोत्तमं सिद्धलोकोत्तमं साहु लोकोत्तमं केवलपण्डस्तु धम्मो लोकोत्तमं चत्तारि शरणं उवज्जामि हरिहन्त शरणं उवज्जामि सिद्ध शरणं उवज्जामि साहु शरणं उवज्जामि केवलपण्डस्तु धम्मो शरणं उवज्जामि। परम पूज्य देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज ये उपदेश श्रृंखला योग पर चल रही है। आज संस्कृत हिंदी कोश में योग शब्द के अर्थों पर दृष्टि डाली तो वहां पर योग शब्द के 32 अर्थ दिए हुए थे। और उन अर्थों के अतिरिक्त जैन शासन में योग शब्द के कुछ अर्थ हैं। मन वाणी और शरीर के निमित्त से जो आत्मा में कंपन पैदा हो जाती है उसको भी योग कहा गया है। ध्यान की अवस्था को भी आचार्यों ने योग कहा और अष्टांग योग का वर्णन तो चल ही रहा था। कहते हैं कि जिसका आज तक समागम नहीं हुआ, संसार की 84 लाख योनियों में अनादिकाल से अनंत शरीर धारण कर करके प्रत्येक प्राणी भटक चुका, लेकिन तो भी जिस परमात्मा का आज तक समागम नहीं हुआ, उसका समागम भी योग कहलाता है। साधना पद्धति में योग के जो 8 अंग हैं, उसमें सबसे पहला स्थान है यम का, अर्थात पाप प्रवृत्ति का जीवन भर के लिए संकल्प पूर्वक त्याग कर देना। मन वचन का है कृत कारित और अनुमोदना से जो त्याग है, स्थूल और सूक्ष्म पापों का जो त्याग है, वह तो महाव्रत की श्रेणी में आता है, जिसका पालन अथवा ये कहना चाहिए जिसको धारण करने वाले मुनिराज होते हैं। और बाकी अपनी निचली भूमिका में अणुव्रतों के रूप में इन 5 पापों को छोड़ा जाता है। अष्टांग योग में दूसरा स्थान था नियम का। नियम का सीधा सीधा अर्थ होता है संकल्प लेना, लेकिन समय सीमा बांध कर संकल्प लेना। यम याने वो संकल्प जो जीवन पर्यंत चले, और नियम याने एक समय की अवधि तक चलने वाला संकल्प। फिर तीसरा स्थान था आसन का। कोई सोचता होगा कि आसनों का क्या महत्व है। आसनों का महत्व स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में आसनों का क्या महत्व। लेकिन तो भी योग के 8 अंगों में तीसरा अंग आसन है, जिसका बड़ा महत्व है, क्योंकि शरीर यदि चंचल होगा, शरीर यदि वश में नहीं होगा, तो बाकी चीजें कहां से वश में होगी। जो अपने तन पर नियंत्रण नहीं पा सका, वो मन पर क्या नियंत्रण प्राप्त करेगा। इसलिए आसनों का महत्व है। और ध्यान के लिए कुछ विशिष्ट आसन हुआ करते हैं। जिनके माध्यम से बिखरती हुई ऊर्जा को सुरक्षित किया जाता है। अब इसको साधारण रूप से अपन समझ सकते हैं। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो जानते होंगे कि हर वस्तु में एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से कई प्रकार के वैज्ञानिक चमत्कार सामने आते हैं। बच्चों के कुछ खिलौने होते हैं कि ऐसे किसी नुकीली चीज के ऊपर कोई वजनदार चीज जो हिलने डुलने वाली है उसको बैलेंस किया जाता है, और वो गिरती नहीं वो चीज, जैसे दो हाथ है किसी एक आकृति में और दोनों हाथों में कुछ वजन है और एक ऐसे छोटे से प्लेटफॉर्म पर उस आकृति को खड़ा कर दिया गया है, तो उसको बच्चे धकेलते हैं तो वो हाथ हिलते तो हैं लेकिन वो चीज वहां से नीचे नहीं गिरती। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सिद्धांत पर बना हुआ खिलौना है खिलौना। खिलौनों से भी बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती है। खिलाड़ी होना चाहिए, समस्या ये है कि सब खिलौने बने हुए हैं, खिलाड़ी कोई इने गिने हैं जो इस संसार के विशाल क्रीड़ा स्थल पर अपनी कुशलता के माध्यम से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। देखो फुटबॉल खेलने वालों को कितना आनंद आता है और देखने वालों को कितना आनंद आता है, पर फुटबॉल की क्या हालत होती है सोचो। माने एक गेम में कितनी लातें खानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि अपन अपनी स्थिति का विचार करें तो जब तक अपने अंदर वो कला नहीं आती, जब तक अपन खिलाड़ी नहीं बन जाते, तब तक खिलौना बनकर बार बार टूटते रहते हैं, फिर रिपेयर करना पड़ता है, फिर कोई तोड़ देता है। ये अनादि काल से चलता चला आया। तो जब अपन सही आसन में बैठते हैं, सही मुद्रा होती है शरीर की, तो जो शक्ति अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रही है वो बर्बादी रुक जाती है। जैसे अपने शरीर का केंद्र कौन सा है बोलो, कहां होनी चाहिए अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नाभि। अब नाभि परमाणु होता है, वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार जिसको परमाणु कहा गया है उसके बीच में भी एक नाभि होती है, न्यूक्लियस उसको बोलते हैं। अपने शरीर में भी नाभि का स्थान जो है वो केंद्र है। वैसे तो ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी अनेक केंद्र बतलाए गए हैं, शक्ति केंद्र है, आनंद केंद्र है, विशुद्धि केंद्र है, ज्ञान केंद्र है और दर्शन केंद्र है। जैन पद्धति के अनुसार ऐसे पांच केंद्र बताए, पर क्या आपने कभी देखा कि बैठते समय कैसा महसूस होता है? कभी बैठकर देखा आपने शांति से? क्योंकि ऐसे अनेक इंसान हैं जिनका जीवन निकल जाता है लेकिन शांति से बैठने का कभी मौका ही नहीं पड़ता। शरीर से बैठ भी जाए लेकिन अंदर की व्यग्रता बनी रहती है। अब कोई सोचे कि हम थोड़ी देर बैठ करके माला फेर लें या कुछ धर्म ध्यान कर लें, लेकिन अभी समय नहीं हुआ है तो इतना समय कैसे पास करें? जैसे मान लो किसी को शाम को 6 बजे बैठना है और अभी 6:45 हो, तो उसको चिंता लग जाती है कि 15 मिनट कैसे निकाले। और फिर वो कोई तरीका निकाल ही लेता है क्योंकि मन बड़ा चालाक है, देखता है इधर उधर कोई ऐसा इंद्रियों का विषय मिल जाए कि जिसमें इतने 15 मिनट निकल जाए। क्योंकि खाली बैठना सबसे बड़ी समस्या है मनुष्यों के सामने। टीवी के सामने बैठा दो तो फिर बैठे रहेंगे, लेकिन खाली बैठा दो तो फिर पसीना आ जाएगा। तो देखता है कि एक अखबार सामने पड़ा हुआ है, सोचता है कि सुबह समय नहीं मिल पाया था, अभी देख लो। देखता है वो अखबार को और देखते देखते थोड़ा सा उसमें तल्लीन भी होता है लेकिन साथ में ये भी विकल्प है मन में कि 6 बजे धर्म ध्यान करना है, तो फिर पढ़ते पढ़ते जब मन लगता है तब 6 बज जाते हैं और फिर अखबार उसको छोड़ना पड़ता है और बैठता है। अखबार बाहर से तो छूट जाता है लेकिन 6 बजे के बाद अंदर की क्या दशा होती है इससे आसानी से पहचाना जा सकता है कि अभी कौन सा ध्यान चल रहा है, अखबार का या धर्म। कहीं स्कूटर है, एक एक्सीडेंट दिखाई देता है, आंख बंद है, और कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा आ जाता है, कहीं क्रिकेट मैच आ जाती है, कहीं और कुछ दिखाई देता है, और जिसके जो विषय है उसको वो विषय दिखाई पड़ते हैं। आप कभी शांति से बैठकर देखिएगा कितनी देर आप बैठ पाते हैं, अथवा वैसे ही बैठ जाओ और देखो क्या होता है। आप एक तरफ झुककर बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद लगेगा कि अब इस तरफ थोड़ा झुक लो, यदि आप टेढ़े बैठेंगे तो लगेगा कि अब सीधे बैठ जाएं, यदि सीधे बैठे होंगे तो लगेगा कि अब थोड़ा टिक जाएं, पद्मासन लगाकर बैठेंगे तो लगेगा कि पैर थोड़े ढीले कर लें। माने कुछ न कुछ अंदर चलता रहेगा, वो स्टिलनेस जिसको बोलते हैं, निश्चलता, वो नहीं आ पाएगी। इसका कारण क्या है? अपन दोष देते हैं वातावरण को क्योंकि पुरानी आदत पड़ी हुई है। जैसे पिछले उपदेशों में एक बार एक दृष्टांत आया था, किसी ने राजा जनक से कहा कि मैं तो सब संसार की असारता समझ चुका हूं पर कुटुंबी लोग छोड़ते नहीं, धर्म ध्यान करने नहीं देते, क्या करें, आप इसका समाधान दीजिए। तो उन्होंने फिर एक खंभा पकड़ करके कहा कि इस खंभे से मेरा हाथ अलग करके बताओ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उसने अपनी शक्ति लगाई लेकिन अलग नहीं कर पाया। तो जनक ने पूछा कि कैसे अलग हो, बोले कि आप छोड़ दो तो अलग। तो जनक ने कहा यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, तुम कुटुंब का मोह छोड़ दो तो किसी ने तुम्हें नहीं पकड़ा। वास्तव में अपने मोह ने ही अपन को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तो जब शरीर के केंद्र में यानी नाभि में गुरुत्वाकर्षण केंद्र आ जाता है सही आसन के माध्यम से, तब शांति से बैठने में बहुत सहूलियत होती है। आप गरुड़ आसन में खड़े रहोगे तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हम बदल लें आसन, या और कोई कठिन आसन लगाकर बैठोगे तो भी तसल्ली नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसी मुद्रा में आप बैठेंगे, इसीलिए ध्यान की मुद्राएं अलग प्रकार की बतलाई गई हैं। तो साधना के अभ्यास में उन मुद्राओं का भी आलंबन साधक को लेना पड़ता है, और जब वह अभ्यस्त हो जाता है तब की स्थिति जुदी है। कोई ऐसा मत समझना कि बस उन्हीं मुद्राओं के द्वारा जीवों को मोक्ष प्राप्त होता होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन्होंने मन को शांत रखने की कला प्राप्त कर ली उनके लिए इन आसनों का भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो आसनों से ऊपर उठ चुके हैं और ऊंची भूमिका में प्रविष्ट हो चुके हैं। आसन भी एक भूमिका है। फिर आसन के पश्चात चौथा अंग था प्राणायाम, सांस लेने की कला। कहां से सांस लेना, कैसे लेना, कितना लेना, आप देखिए। बैठे बैठे क्या कभी आप अच्छे ढंग से भर कर सांस भी लेते हैं? पता चलेगा कि हम सांस भी ढंग से नहीं ले पाते, माने इतनी अधिक व्यग्रता है कि कोई काम ढंग से हो नहीं पाता। सांस लेते समय माने उसमें भी बहुत सारी अवस्थाएं, स्टेजेस हैं। एक तो सामान्य रूप से ये है कि आवाज नहीं आनी चाहिए, और आवाज अभी तो आप नहीं समझ पाएंगे, ये सब आवाजें हैं यहां पर। कभी सन्नाटे में बैठ के देखना कि सांस लेने की आवाज आती है कि नहीं। अब इसके लिए कान भी सही होने चाहिए ना। देखिएगा सांस की आवाज ना आए, क्योंकि जब सांस की आवाज आती है तब भी शक्ति व्यर्थ में खर्च हो जाती है। अब ये व्यर्थ में खर्च होने वाली शक्ति को संचित करके योग को आगे बढ़ाने की बात है, तो सांस को पूरा भीतर तक भरना और फिर उसको सहज रूप से छोड़ना। भरते समय भी ऐसा नहीं भरना कि फिर दूसरी सांस लेने में परेशान हो जाओ। एक बार में इतनी भर ली कि बस फिर हांफने लग गए, तो वो भी तनावपूर्ण न हो। अच्छे ढंग से सांस अंदर लेना, फिर छोड़ना, आवाज भी ना आने देना। तो इस प्रकार आप बैठेंगे कुछ समय तक एक मुद्रा में, तो फिर आपको एक हल्कापन महसूस होगा। ये पहचान है हमारी, आसन सही है या गलत इसकी क्या पहचान है कि आसन मानकर थोड़ी देर बैठने पर, शांति से सांस लेने और छोड़ने पर यदि एक हल्कापन महसूस हो तो समझना चाहिए कि ये आसन आज ठीक लग गई है। और यदि आकुलता होने लग जाए कि कांटा बहुत देर से खिसक रहा है, ऐसा लगने लग जाए, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी प्रक्रिया में कोई गलती हो रही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और इसके आगे की स्थिति है प्रत्याहार। प्रत्याहार माने इंद्रियों को जीत लेना। इंद्रियों के विषय सामने है लेकिन फिर भी अंदर कोई खलबली नहीं है। आचार्य श्री इसका उदाहरण देते हैं कि शक्कर से भरी हुई चम्मच मुंह में रखी हुई है 5 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी बाहर सूखी निकलती है, गीली नहीं होती वो शक्कर। रसना इंद्रिय जय। प्रत्याहार, प्राणायाम के द्वारा जो काम कई वर्षों की साधना के उपरांत संपन्न हो पाता है, प्रत्याहार के द्वारा वो काम अंतर मुहूर्त में हो सकता है, माने बहुत कम समय में। पर प्रत्याहार की अवस्था को प्राप्त करने वाला तो बिरला ही होगा। फिर धारणा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें चलती ही रहती अंदर, और उन धारणाओं के संस्कारों के कारण सपने में भी बहुत सी चीजें दिखती है। जब कोई इष्ट वस्तु नहीं मिलती और उसकी तीव्र लालसा रहती है कि मिल ही जाए, तो एक आध दिन सपने में वो मिल भी जाती है, फिर आंख खुलने के बाद पता चलता है कि कुछ नहीं था। लेकिन ये सब संस्कार और धारणाएं जागृत और सुषुप्त अवस्था में काम करती रहती हैं। लेकिन यहां तो साधना के क्षेत्र में कुछ भिन्न प्रकार की धारणाओं का आलंबन लेकर मन को प्रशस्त बनाया जाता है, स्वस्थ बनाया जाता है कहना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से तो प्राय सब बीमार मिलेंगे आपको। शरीर भले किन्हीं का स्वस्थ हो, शरीर भी 10-12% लोगों का स्वस्थ कहलाने योग्य है, बाकी तो प्राय दवाइयां लेते ही रहते हैं। आप देख लीजिए ऐसे कौन से घर हैं यहां अमरावती में कि जहां दवाई की एक भी बोतल न रखी हो। देखो कोई ना कोई तो बीमार है। क्या कारण है बीमारी का और निरोग कैसे रहा जाए? तो इसके 3 उपाय हैं, निरोगता के 3 उपाय हैं। एक पहला उपाय तो यह है कि निश्चिंत रहो, दूसरा है संतुलित भोजन करना। सात्विक भोजन तो करना ही है लेकिन संतुलित, ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं तो फिर 2 के बजाय उसको और डबल करके खा लें, ये मतलब नहीं है। सात्विक के साथ साथ आहार संतुलित हो, ये भी स्वस्थ रहने का एक उपाय है। और तीसरी तरकीब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के माध्यम से भी खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो सकता है, खोई हुई सुंदरता पुनः हासिल हो सकती है। और ये जो शारीरिक ब्रह्मचर्य है उसकी बात की जा रही है, फिर जो अंतरंग ब्रह्मचर्य है वो एक अलग वस्तु है, यद्यपि उसमें शारीरिक ब्रह्मचर्य का संबंध जरूर जुड़ जाता है। तो इन 3 बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो मनुष्य बीमारियों से बच सकता है। लेकिन इंद्रियों के प्रलोभन इतने भयंकर है कि यदि कदाचित इस धर्म सभा में भी कहीं से भजिए की खुशबू आ जाए तो अच्छे अच्छे श्रोताओं का मन विचलित हो जाए। मतलब ऐसे विचार बनने लग जाए, यहां चाहे कितनी भी अच्छी वैराग्य की दीक्षा की बात चल रही हो, मन में आए कि पहले भजिया खा लूं फिर बाद में कभी दीक्षा लूं, इतनी चंचलता आ जाती है। तो रोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं और आज तो और भी नए नए रोग सामने आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण कोई कीटाणु या फिर कोई दूसरे जीव जंतु या और कोई वस्तु नहीं, किंतु उसका कारण सिर्फ मनुष्य का खुरापात है। दुनिया में मनुष्य ने जो असंतुलन पैदा किया है उसके कारण ही सारी विषमताएं आज अपने सामने हैं। अमेरिका में कितने प्रकार की बीमारियां और फिर यहां हिंदुस्तान में भी कितने प्रकार की बीमारियां, और इन शारीरिक बीमारियों के अतिरिक्त और दूसरी बीमारियां भी हैं। मानसिक बीमारियां तो प्राय आपको मिलेंगी ही हर जगह, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स परेशान है, माने अपने आप को इतना लघु समझता है जितना है ही नहीं वो, माने वो सबके सामने चेहरा दिखाने लायक भी नहीं समझता अपने आप कि भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझसे बोलते नहीं बनता। इसलिए ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो धर्म लाभ लेना चाहते हैं और साधु संतों का उपदेश भी सुनना चाहते हैं लेकिन धर्म सभा में बैठते समय उनको संकोच महसूस होता है, इसलिए कहीं बाहर दूर जहां स्पीकर की आवाज पहुंच जाती है वहां से चुपचाप सुनते रहते हैं। तो ये सारी स्थितियां आज सबके सामने है। और चूंकि अपनी धारणाएं बदल नहीं पा रही है, इसलिए बड़ी बड़ी बीमारियां पीछे लगी हुई हैं। धारणा बदल जाए तो स्वस्थ होने में देर नहीं लगती। किसी पुस्तक में पढ़ा था कि डॉक्टर ने मरीज से कह दिया कि अब तुम उस अवस्था में आ चुके हो कि जहां चंद हफ्तों में सब काम पूरा हो जाएगा, माने अब हम तुम्हारे जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तब तक तो उसने दुनिया भर में जा जा करके बड़े बड़े चिकित्सकों से इलाज करवाया, परिश्रम किया, पैसे खर्च किए, लेकिन अब जैसे ही उसको लगा कि कुछ हो नहीं सकता, तो उसने रोग की चिंता करना छोड़ दिया। कुछ हो नहीं सकता तो क्या चिंता करना, उसने चिंता करना छोड़ दिया कि जब इतने बड़े चिकित्सक अपना स्टेटमेंट दे चुके कि बस थोड़ा समय रह गया तुम्हारा, अब कुछ हो नहीं सकता, दवाइयों से जिस रोग का इलाज नहीं हो पा रहा था वो निश्चिंत हो जाने से हो गया। उसके पेट में जो छाले पड़ गए थे अंदर, निश्चिंत हुआ तो फिर वो सब ठीक ठाक हो गया। क्योंकि तनाव के कारण जो विषैले रस बन रहे थे शरीर में, वो बनना बंद हो गया और दवाइयां काम करने लग गई। ये स्थिति होती है जब धार्मिक लोगों पर भी कोई विपत्ति आती है, वो भी कभी कभी चिंता करने लग जाते हैं। यद्यपि होना तो ये चाहिए कि अपन अपना कर्तव्य करते चले और जो भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। माने हमारे सामने तो आज है, जो बीता हुआ कल है वो तो मर चुका है, और जो आने वाला कल है वो अभी जन्मा ही नहीं है। जो अपने सामने है वो तो आज है, तो आज का काम निपटाते चलो और अच्छे भाव रखो, इतना कर्तव्य होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी चिंताएं घेर लेती हैं, क्योंकि संसार कोई मामूली चीज है नहीं, ऐसा विकट जंजाल है कि अच्छे अच्छे लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय जैसा रूसी लेखक, जिसकी पुस्तकों को पढ़ करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी जीवन भर पारिवारिक तनावों से छूट नहीं पाया, परेशान रहा। क्यों परेशान रहा? गृह मंत्री ठीक नहीं था बस। गृह मंत्री जानते हैं ना आप, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। तो बस वो जीवन भर टसल चलती रही, लेकिन धारणा जो थी वो बड़ी बाधक बनी। आप भी देख लीजिएगा आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो किस कारण से हैं, दूसरों के कारण या अपनी धारणाओं के कारण। धारणा बदली कि दुनिया बदली? आप दुनिया को बदलना चाहोगे तो बहुत बुरी तरह से फेल होगे, क्योंकि जिस दुनिया को बड़े बड़े तीर्थंकर नारायण बलभद्र चक्रवर्ती भी नहीं बदल पाए, उसको बदलने वाले आप कौन होते हो? माने इतने बड़े बड़े महापुरुष, राम जैसे पवित्र पुरुष ने भी इस धरती पर विचरण किया, लेकिन उन्हीं का नाम लेने वाले कैसे कैसे काम करते हैं ये खुद वो जानते हैं। नाम लेने वाले खुद जानते हैं कि हम क्या करते हैं, भले दूसरे जाने या ना जाने। अब यहां सिर्फ राम नाम की बात नहीं है, ये तो उपलक्षण मात्र है। और भी जितने भक्त कहे जाने वाले लोग हैं या जितने तथाकथित धर्मात्मा हैं, उनकी भी स्थिति आप देखिएगा। या सीधा सरल उपाय तो यह है कि किसी की स्थिति न देखते हुए आप अपनी स्थिति देख लो कि हम दिखाते क्या है अपने आप को और हम हैं क्या। इसको सबसे अच्छी तरह से तो स्वयं देखा जा सकता है। जब बाहर जाते हैं दुकान पर या ऑफिस पर या और कहीं किसी मित्र के यहां, तब एक दूसरी छवि लेकर के जाते हैं। जब अपने बेटे के सामने खड़े होते हैं तब एक दूसरी छवि होती है। जब साधु संतों के पास आते हैं तो कुछ और बन करके आते हैं, और जब सिनेमा थिएटर में या फिर और कहीं जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए, वहां स्थिति कुछ और हो जाती है। और जब अकेले बैठते हैं अपने कमरे में, वहां स्थिति कुछ और हो जाती है। मैंने कुल मिलाकर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अपनी ही इन भिन्न भिन्न स्थितियों के दिखावे का टकराव है। क्योंकि ये कोई मामूली काम तो है नहीं, इतनी बड़ी एक्टिंग, लेकिन है सबके सब एक्टर। भले कोई सिनेमा स्टार्स को एक्टर कहें, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में एक्टर है। आप देखो ना, अभी आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, और गेट के बाहर आप कैसी एक्टिंग करेंगे, घर जाकर के कैसी करेंगे, कल कैसी करेंगे। आज तो संडे है तो संडे की एक अलग एक्टिंग है। तो इतना बड़ा बोझ जो अपने सिर पर है, उसी के कारण तो पसीना आ रहा है, शांति से नहीं बैठ पा रहे। और साधु की छवि कैसी है, कभी भी मिलो, कहीं भी मिलो, कैसे भी मिलो, जो भीतर है सो बाहर है। पर्यूषण में आप लोग बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां गाते हैं, पता है हमें, मन में है सो वचन उचरिए, ये सब बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पता चलता है कि पंक्ति जैसे ही समाप्त हुई और अर्घ चढ़ गए, खाली हो गई थाली, बाहर निकले और फिर तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी घटना घट सकती है, उसका तो विवरण अनावश्यक है, सब परिचित है। ये धारणाओं को प्रशस्त बनाने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित धारणाएं हैं, जिनका आलंबन लेकर पांच धारणाएं आती है वैसे साधना पद्धति के अंतर्गत। पृथ्वी संबंधी धारणा है, जल संबंधी है, अग्नि संबंधी है, वायु संबंधी है, और एक अंतिम धारणा जो है तत्व रूपवती धारणा कहलाती है। इनके आलंबन से अपन कुछ समय के लिए मन को उन सांसारिक उलझनों से दूर हटा सकते हैं, और इसके बाद ध्यान की अवस्था है कि जिसका विवरण बड़ा विस्तृत है। क्योंकि हर व्यक्ति ध्यान में है, कोई ऐसा ना सोचे कि जो इस प्रकार आसन लगाकर बैठा हुआ है आंख बंद करके वो सही ध्यान कर रहा है, ऐसा आवश्यक नहीं है। द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है, उसमें तो आचार्य नेमीचंद स्वामी कहते हैं, जम किंचि विचिंतन्तु निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूणय एयत्तम तदाहुतम निश्चयम झाणम। बोलते हैं कि एकत्व, वही भक्ति, विवेक, वैराग्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को जिस योगी ने प्राप्त किया है, वह निरीह वृत्ति, निष्काम परिणति को प्राप्त होता हुआ, सभी पर पदार्थों के प्रति अनासक्त होता हुआ, जो कुछ भी सोचता है वो सारा का सारा ध्यान रूप हो जाता है। अगर साधु किसी करोड़पति के बारे में भी विचार करेंगे तो वो भी धर्म ध्यान की श्रेणी में चला जाएगा, वो आर्त रौद्र ध्यान रूप नहीं हो सकता। और आप अगर किसी करोड़पति या अरबपति के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से वो आर्त ध्यान रूप हो जाएगा या फिर रौद्र ध्यान रूप हो जाएगा। अगर आपका कोई मित्र रहा तो फिर रौद्र ध्यान रूप होगा, आपको लगेगा कि हमारा मित्र इतना पैसे वाला है, हो गया रौद्र ध्यान, आनंद आ गया ना आपको, पैसे में आनंद आ गया तो रौद्र ध्यान हो गया। और यदि वो आपका मित्र नहीं है, आपको उससे ईर्ष्या है, तो आप उसके बारे में सोचते सोचते अंदर ही अंदर जलने लग जाओ कि इन्हीं के कारण तो दुनिया बिगड़ रही है, कोई गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देता, इतने पैसे हैं लेकिन फिर भी खर्च करने का नाम नहीं, कंजूस कितने हैं। ऐसे अगर विचार आएंगे हो गया आर्त ध्यान, हुआ कि नहीं। और साधु अगर विचार करते हैं क्या विचार करेंगे, लक्ष्मी पुण्य की संगिनी है, इस व्यक्ति की नहीं, क्या हो गया, न आर्त ध्यान हुआ न रौद्र ध्यान। अज्ञानवश यह संसारी प्राणी इस लक्ष्मी को अपनी संपदा मानता है, वास्तव में लक्ष्मी का संबंध तो केवल इसके पुण्य के साथ है, इसका पुण्य जहां नष्ट हुआ तो लक्ष्मी रवाना, इसीलिए तो लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है, चंचला। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। एक कथा आती है विष्णु और लक्ष्मी, बड़े प्रसिद्ध नाम है हिंदुस्तान में, विदेशों में भी लोग सुन चुके हैं इन नामों को। एक बार इनमें आपसी वार्ता होती है, दोनों आपस में हिसाब लगाते हैं कि किसके भक्त ज्यादा है, आपके या हमारे। अब नारायण कहते हैं कि इस वक्त ये कोई प्रश्न है, सारी दुनिया नारायण नारायण, नारद जी भी नारायण नारायण बोलते हैं, सब अधिकतर तो भक्त हमारे ही हैं। लक्ष्मी बोलती है कि लक्ष्मी पूजा भी तो हर साल होती है। विष्णु बोलते हैं कि अरे लक्ष्मी पूजा तो साल में एक बार होती है, लेकिन हमारी पूजा तो रोज मंदिरों में चलती है। देखो आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, पूरे हिंदुस्तान में वैष्णव लोग हैं, विष्णु के भक्त। अब बड़ी समस्या दोनों में, आपस में दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो बोले कि अच्छा ऐसा करते हैं कि परीक्षा ले लें। जिसके चरणों में ज्यादा भक्त आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसके ज्यादा भक्त हैं। तो इस बात को लेकर के आ गए दोनों धरती पर, लेकिन विष्णु तो अपने उस रूप में आए, सुदर्शन चक्र है, गदा है, शंख है, पद्म है, इन सब चीजों को लेकर के आगे शेषनाग के उसमें बैठ के। बहुत भीड़ लग गई, बहुत सारे पुजारी और भक्त लोग वहां पहुंच गए, सब अपनी अपनी भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ अर्पित करने लगे। लेकिन लक्ष्मी ने एक तरकीब की, वो तरकीब क्या थी, लक्ष्मी ने सोचा कि हम अपने रूप में क्यों जाए, रूप बदल कर देखें क्या स्थिति है, कौन किसको ज्यादा चाहता है। तो उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया और फिर किसी को दया आ गई उस बुढ़िया पर, तो उसने भोजन परोस दिया उसके सामने, और उस बुढ़िया ने जब पूरा भोजन किया तो वो थाली स्वर्ण की हो गई, बुढ़िया वहां से चली गई। अब ये खबर जो है, ऐसी खबर तो छुपती नहीं, इतने जल्दी फैली ये खबर, और फिर किसी ज्योतिष ने ये भी कह दिया कि इस थाली में तो लक्ष्मी देवी साक्षात भोजन करके गई है, तो बस सब लोग लक्ष्मी देवी की खोज में, और वहां जहां नारायण की भक्ति चल रही थी, विष्णु जी बैठे थे, वहां भी ये खबर पहुंची धीरे से खसर पुसर। पांच मिनट लगी, पूरा पंडाल खाली, और तब विष्णु जी ने कहा कि भाई मान गए, तुम्हारे भक्त हमसे ज्यादा है। तो ये आर्त रौद्र ध्यान लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति को देख करके रागी जीव के हृदय में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो विरागता की ओर बढ़े हैं वो उनको देख करके भी धर्म ध्यान का आलंबन लेते हैं। है संपत्ति, लेकिन संपत्ति का संबंध किसके साथ है? क्या ये लक्ष्मी आज तक किसी की हुई? चक्रवर्ती की लक्ष्मी भी जब उसके साथ नहीं गई, और इंद्र की संपत्ति भी जब हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रही, तो फिर सामान्य मनुष्य कहां लगता है? नश्वर है धन संपदा, नश्वर है सम्मान, नश्वर है नाते सभी, नश्वर है तन प्राण। इस प्रकार ये योग के अंगों में ऐसी कुछ बातें यहां स्पष्टीकरण के रूप में रखी गई हैं। यद्यपि विषय बड़ा विस्तृत है, लेकिन अपन समय अनुसार देखते जाएंगे, और आज इतना सुनने के बाद मैंने एक निर्णय तो अपन कर सकते हैं कि संपत्ति का संबंध पुण्य से है, उसका अहंकार करना बुद्धिमानी नहीं है। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन,
अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन,
सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन,
सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन,
आचार्य को नमन, आचार्य को नमन,
आचार्य को नमन,
उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन,
उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन,
सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन,
ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन,
ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन,
इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन,
इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन,
इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचतन,
इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचतन,
नमो अरहंतानम,
नमो अरहंतानम,
नमो सिद्धानम,
नमो
आयरियाणम,
नमो आयरियाणम,
नमो वज्जायाणम,
नमो वज्जायाणम,
नमो लोय सर्व साहूणम,
नमो लोय सर्व साहूणम।
बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, जिनवाणी माता की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज।